आप SBS हिंदी सुन रहे हैं। हर शाम हमारा कार्यक्रम अपने रेडियो पर लाइव सुने। आप जब चाहे तब हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट और SBS रेडियो मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में नमिता गोखले जी हैं। इन्हें किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। नमिता जी वही हैं जिन्होंने जयपुर का तड़का, जयपुर साहित्य मेले को मेलबर्न तक पहुंचाया है। नमिता जी, SBS के हिंदी कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
धन्यवाद।
नमिता जी, सबसे पहले तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं कि आपने जयपुर लिटरेरी फेस्ट को मेलबर्न तक पहुंचा दिया। जयपुर में तो हम जानते हैं कि बड़े स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय लेखक और कवि और फिक्शन नॉन फिक्शन दोनों तरह के राइटर्स जो हैं वो आ रहे हैं काफी लंबे समय से। आपके हिसाब से प्लेटफॉर्म के अलावा क्या ऐसी बात है JLF में कि लोग को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ?
हमारा जो जयपुर साहित्य उत्सव है उसके अब 10 साल 10 कड़ी बीत चुके हैं। उसमें एक उत्साह होता है, ऑडियंस में भी वो उत्साह होता है, लेखकों में भी वो उत्साह होता है। और वो इसलिए है क्योंकि असली सर में अंतर्राष्ट्रीय है। हम लोग ना अंग्रेजी को ज्यादा मान्यता देते हैं, हिंदी को तो हम मानते ही हैं, और जितनी भारतीय भाषाएं उनको भी हम एक प्लेटफॉर्म देते हैं। और बाकी दुनिया से भी स्पैनिश, फ्रेंच, अरबिक, ये सब भाषाएं आती हैं। इस साल 30 भाषाएं थी। और ये हमारा इसमें कोई कमर्शियल इतना नहीं है कि ये किताब बिके, ये प्रमोट हो। हम कहते हैं कि जहां भी कोई लेखन कर रहा है, चाहे वो भारी बड़ी आवाजें हों या जो आवाज अभी अनसुनी हो, जो हाशिए से हो, उन सबको हम वहां लाते हैं और एक दूसरे के साथ वो वार्तालाप करते हैं। तो ये जो एक एटमोसफेयर है वहाँ, वो जैसे आपने साहित्य मेला कहा, वो साहित्य मेले की तरह है कि वहाँ जरा संगीत भी होता है, तरह तरह की म्यूजिकल परफॉर्मेंस होती हैं, और हाँ हंसी मजाक खाना पीना भी होता है। इतना हम उसको कोई सीरियस और एकेडमिक नहीं बनाते हैं
जी।
तो ये बात है कि कुछ वहाँ कुछ बात है,
लोगों को खींच लाता है। आपने साहित्य मेले की बात की, अब मैं कहूंगा कि वो साहित्य का महासागर बन चुका है जहाँ सारी आवाजें आके डुबकी लगा रही है। गंगा जमुना सरस्वती जो कहेंगे, संगम हो रहा है सब।
यही मेरी आपने मन की बात कह दी
जी। अब उस संगम को और उस जयपुर के तड़के को आप मेलबर्न में ले आई हैं, तो भारतीय और ऑस्ट्रेलिया के राजनीतिक और सांस्कृतिक तौर पे अगर हम बात करें संबंधों से, तो आप कितना लंबा जाने को तैयार हैं अब?
यह आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि मैंने उसको कई साल पहले साहित्य का महाकुंभ कहा था। उसके बाद मैंने एक और उपमा दी, मैंने उसको कहा बरगद का पेड़। और जो बरगद का वृक्ष होता है उसकी यही खासियत होती है कि वो अपने अपने जो ब्रांचेस हैं फैलाता है और फिर वो नीचे बन के वो भी रूट ले लेते हैं। तो इसी तरह से हम चाहते हैं कि यहाँ ऑस्ट्रेलिया में, मेलबर्न में, बाकी ऑस्ट्रेलिया में जो एक बहुत नया लिटरेचर है यहाँ, और यहाँ हिंदी और भारतीय भाषाओं के भी कुछ रिप्रेजेंटेशन है, तो हम यहाँ जरूर लाएंगे। और हम यहाँ ने जो बरगद के पेड़ के जो ब्रांचेस होते हैं, दे विल टेक नो न्यू रूट हियर इन।
मतलब आने वाले वर्षों में हम 2 दिन से पूरे सप्ताह का एक मेला यहाँ पर देखने के लिए तैयार रहें।
देखें कहाँ, ऑस्ट्रेलिया तो बहुत बड़ा देश है, यहाँ मेलबर्न में ही नहीं, कहीं कहीं भी हो सकता है। करेंगे जरूर कुछ, अवश्य ही करेंगे। और हर साल आपके स्टूडियो में आपके जो सुनने वाले हैं उनको बताएंगे, उनको बुलाएंगे, और जो भारत और ऑस्ट्रेलिया की जो टाइज हैं उनको आगे ले जाएंगे। क्योंकि ऑस्ट्रेलियन लेखक हर साल जयपुर आते हैं, आते रहे हैं, और पिछले 2-3 साल से एक जयपुर बुकमार्क है जो पब्लिशिंग का है हमारा, उसमें यहाँ के प्रकाशक आते हैं बहुत
जी। अब हम बात करते हैं आपकी अपनी लेखनी की। आप इंडियन इंग्लिश राइटर्स में काफी नामी हैं। अगर हम बात करें इंग्लिश इंडिया की, ऐसा भारत जो कि मॉडर्न है, और इंडियन इंग्लिश राइटिंग की, लेखनी की, आपको कुछ बैर नजर आता है दोनों में? कन्फ्रंटेशन सा चल रहा है भारत में, दो भारत बट चुके हैं।
ये भारत दैट इज इंडिया, इंडिया दैट इज भारत की जो पुरानी कहानी है और इसको मुझे बहुत कंसर्न रहता है कि ये कैसे इन दोनों के बीच में जो दूरियां हैं कैसे इनको हटाया जाए। तो एक हमने इस बार किताब भी छापी है, अपने हमारी एक प्रकाशन की कंपनी है यात्रा बुक्स, तो इसमें हमने अभी इस बार छापा था ट्रांसलेटिंग भारत। तो ये जो ट्रांसलेटिंग भारत की बात है, क्योंकि चाहे मैं अंग्रेजी में लिखती हूँ पर मैं हिंदी इतनी अच्छी ना लिख पाती हूँ ना बोल पाती हूँ, पर पढ़ती जरूर हूँ, समझ है, अप्रिसिएशन है। और मुझे लगता है हिंदी और बाकी जो भारतीय भाषाएं हैं, जो हमारा बहुभाषित जो हमारा साहित्य का कल्चर है, उसको हम कभी नहीं भूल सकते। और हमारी जो महान हमारा जो लिटरेचर, जो हम कहते हैं मेनी लैंग्वेजेस वन लिटरेचर, तो हमारे पास 22 भाषाएं हैं जो नेशनल लैंग्वेजेस हैं, 22 हैं, उसमें 4 क्लासिकल लैंग्वेजेस भी हैं। तो ये जो भाषाएं हैं, इन सब की बहुत हिस्ट्री है, ये बहुत गहरी भाषाएं हैं। और इसमें जो साहित्य हो रहा है, जो लिखा जा रहा है, वो ग्रास रूट्स लिटरेचर है। तो असली जो भारत की आवाज है, हमारे भाषा की साहित्य में लिखी जा रही है। और जो अंग्रेजी वाले हैं, उनको कई बार पहले ये जो दुनिया में सम्मान ज्यादा मिलता था क्योंकि एक्सेसिबिलिटी ज्यादा थी, पर जितना मैं और बहुत लोग ट्रांसलेशन में अनुवाद में जो हम लोग काम कर रहे हैं, उससे जो भारतीय भाषाएं हैं वो अपनी आवाज दुनिया के सामने पेश कर रही हैं।
जी, अब मैं 2015 में ले चलता हूं आपको, जहां पर आवाजों की एक जंग सी छिड़ गई मोदी सरकार और लेखकों के बीच, साहित्य अकेडमी उसमें फस्ती सी जा रही थी, लोगों ने कहा, जहां पर लोगों ने प्रोटेस्ट में बड़े लेखकों ने अपने पुरस्कार वापस किए। इस पर मैं अपने सुनने वालों को आपका नजरिया सुनाना चाहता हूँ।
ये जो कहा गया था अवार्ड वापसी, इसका नाम दिया गया था, उसमें दोनों तरफ जो लोग थे वो मेरे सब मित्र थे। तो हुआ क्या था कि साहित्य अकादमी ने इतने सालों बहुत अच्छा काम किया है और इस काम को हम सब लोग मानते हैं, उस वक्त वो जरा इनसेंसिटिव हो गए। और उन्होंने जो उनको समझाया जा रहा था कि भाई लोगों की मौत हुई है, कहते हैं साहित्य अकादमी के कुछ फेलोज का असैसिनेशन किया गया है, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, उनको आप ऑनर कीजिए, उनको आप सही तरह से इस बात को आप अपने नोटिस में लाइए, मगर कोई कारण से नहीं हुआ। तो उस वक्त बहुत लोगों ने नाराज होके और अपना फ्रस्ट्रेशन दिखाने को अपने अवार्ड लौटाए। वो अवार्ड से उन्होंने लौटाए, एक तरह से ये समझिए वो दिखाता है कि कितना सम्मान वो करते थे साहित्य अकादमी का। और उसके बाद साहित्य अकादमी ने भी थोड़ा समझ लिया, आई थिंक वो जो समय कट चुका है, बीत चुका है, और वो सब लोग अपना अपना अलग अलग जगह काम कर रहे हैं। अशोक वाजपेयी जी हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं, जयपुर भी कई साल आते हैं, उन्होंने नयनतारा सहगल जी जिन्होंने अवार्ड लौटाया, वो पहले साल उन्होंने कीनोट एड्रेस दिया था। तो लेखक का तो काम है कि अगर कुछ उनको गलत लग रहा है तो उसको वो पब्लिक के नोटिस में आए, वो तो सबसे पहले लेखक को ही बात चुभेगी। मगर आई थिंक अब जो लेखन है वो सब नॉर्मल हो चुका है, और वही लोग जो जिन्होंने अवार्ड लौटाया वो भी कभी एकेडमी में जाते हैं, बोलते हैं लेखकों का तो काम है।
अब बात करते हैं आईना दिखाने की, जो आप आईना दिखाती हैं समाज को अपनी लेखनी से, पारों से लेकर थिंग्स टू लीव बिहाइंड, आपने जिसे कहेंगे कि कई तरीके की आवाजों को जन्म दिया है, खास तौर पे महिला आवाजों को, अपने जो कैरेक्टर्स हैं, फीमेल वॉइसेस हैं, एक मल्टीप्लिसिटी है आपके किताबों में। पहले कैरेक्टर से अब तक जितने कैरेक्टर की हैं, क्या फैसिनेट करता है आपको लेखनी के बारे में और कैरेक्टर्स के बारे में?
ये जो स्त्री संघर्ष का विषय है, मैं अपने मन में कहती हूँ आई एम नॉट अ वुमन राइट, कि जो असली लेखक होता है वो उसमें न स्त्री न पुरुष, दोनों उसमें मिलके अर्धनारीश्वर की तरह एक ही आवाज में लिखते हैं। मगर तभी भी जो हिंदुस्तान में, दुनिया भर में, जो स्त्री को हमेशा एक मार्जिनलाइज किया जाता है, उसकी आवाज को दूसरी तरह से सुनते हैं, तो मेरी नजर वहीं लौट आती है हर बार हर किताब में। पारो तो बहुत मतलब लोगों को शॉक किया उस किताब ने, पर वो अब 32 साल से प्रिंट में है और अभी भी उसको लोग पढ़ के जरा सोचते हैं, जरा हंसते हैं। और जो मेरी नई किताब है थिंग्स टू लीव बिहाइंड, ये मुझे लग रहा है इस किताब में मैंने काफी जो मेहनत की है उस फल पाई है। और इसमें भी हमारे कुमाऊं के, मैं कुमाऊनी हूं, और कुमाऊं की एक जो स्त्री शक्ति है एक अलग तरह की, वो बड़े पावरफुल वुमेन कैरेक्टर्स उसमें हैं, और मैं चाहती हूँ ये भी हिंदी में कुछ ही दिन में हिंदी के पाठकों को मिल जाए। उत्तराखंड की जो स्त्री शक्ति है वो हमेशा मुझे प्रेरित करती है, मैं कुछ भी करती हूँ तो यही मुझे होता है। इस साल भी हमने जयपुर में जो मेरे किताब पे सेशन किया, उसमें शिवानी जी को का हमने याद किया, जो
बड़ी लेखिका रही हैं। आपने प्रेरणा की बात की, तो काफी लोग जो आज हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं वो आपकी तरह और देखते हैं कुछ प्रेरणा के शब्दों के लिए, जिसे हम कहेंगे कि यहाँ के लेखकों की आप बात कर रही थी, तो कैसे उभर कर आए, अपनी लेखनी को कैसे ठीक करें और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति पाएं?
लेखन के लिए पढ़ना पड़ता है और सोचना पड़ता है और अपने आप से एक तरह का संघर्ष करना पड़ता है। इसमें डिसिप्लिन चाहिए
जी।
और ये डिसिप्लिन चाहे ये भी हो कि आप 5 दिन नहीं लिखें, 2 दिन लिखें, हर लेखक अपना डिसिप्लिन खुद बनाता है, उसी से होता है। इसमें लेखन में जो सडनली फेम और फॉर्चून नहीं मिलता है, और अपने लिए लिखना चाहिए। और दूसरी बात है, आज के जमाने में अपने आप ही प्रमोट करना पड़ता है। ये जो वेब है, इस तरह से इतनी अब नई अपॉर्चुनिटीज मिली हैं सेल्फ पब्लिशिंग के लिए। कई लेखक जो सेल्फ पब्लिशिंग में लिखते हैं वो अब बहुत ख्याति पा रहे हैं अपने आप को ही प्रमोट करके सोशल मीडिया से। यहाँ तो आपको लिखना है अपने लिए, पर अपने लेखकों के पास पहुँचने तक भी थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा।
नमिता जी, SBS स्टूडियो में आने के लिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद जी।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए धन्यवाद। पूरा कार्यक्रम कैसे सुने ये जानकारी के लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।